ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार दिव्यधनियो लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯುವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯುವಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯುವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯುವಾಗಿದೆ
पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की एक सहयोग
आयोग
केवली गुणस्थान गुणस्थान 14 होते हैं मोक्ष मार्ग के सोपान कहलाते हैं इन सीढ़ियों को चढ़ करके ही हमें निर्वाण की उपलब्धि होती है चौदवा गुणस्थान का नाम अयोग केवली गुणस्थान अयोग योग रहित योग कितने प्रकार का तीन प्रकार का है मनोयोग वचन योग काय योग सबसे ज्यादा कर्म का बंध किस योग से हो सकता है सब उत्तर अपने आप पता चल
जाएगा
क्योंकि काया से हम दिन भर इतना पाप नहीं करते जितना मन से करते वचन से भी इतना पाप नहीं करते जितना हम मन से करते इसलिए मन को कंट्रोल करने की शक्ति हमें जुटाना चाहिए मन गड़बड़ है मन के माध्यम से ही ध्यान की सिद्धि होती है और मन के माध्यम से ही संसार की सिद्धि होती है मनोबल का हम सदुपयोग करते हैं ज्ञान के साथ साथ हम इन इसका सही उपयोग करते हैं सही दिशा में इसका प्रयोग होता है तो मनोयोग को कंट्रोल में रखना सर्वप्रथम हम सीखते हैं निरोध नहीं होता या अयोगी नहीं बनते थोड़ी सी आवाज बढ़ानी पड़ेगी
मास्टर
है सेकर
मास्टर
मनोयोग और थोड़ा मनोबल को जो हमारे लिए मनोबल को जो हमारे लिए मिला है उसको ठीक जो हमारे लिए मिला है उसको क्या करते ध्यान सिद्धि के लिए हम सर्वप्रथम इस बल का प्रयोग शुभ मार्ग पर लगाते हैं और अशुभ मार्ग से हटा देते हैं। अशुभ मार्ग क्या है? इंद्रिय विषयों का ग्रहण करना, उसका चिंतन करना, उसका विचार करना, बार बार इसमें उलझा हुआ रहता है मनोयोग, इसी इसी में उलझा हुआ रहता है। और सही में आप देख सकते हैं हमारा मन कितने समय तक 24 घंटे में विषयों के चिंतन में रहा और कितने घंटे तक विषयों के चिंतन से मुक्त रहा, कितने घंटे तक पूछ रहे हैं, एक दो मिनट भी ठहरता नहीं वो, इतना स्पीड है वो। मन के ऊपर अनादिकाल से जिसका संस्कार हुआ है वह संस्कार जाता नहीं। इस संस्कार को हटाने के लिए क्या करें, ये मेन प्रश्न है। इसको हटाने के लिए क्या करें, इस प्रश्न का प्रथम उत्तर यही है कि आत्मा की ओर रुचि बढ़ाएं। रुचि के बिना कुछ काम नहीं चलता। रुचि आस्था को जागृत करने का साधन है, सतपथ की आस्था, आत्मा की आस्था। रुचि के बिना संभव नहीं। रुचि बढ़ाना पहला वो है पायरी। आप जितना आकर्षित रहेंगे अपने आत्मा आत्मा से, वही उपयोगी है। जितने रुचिवान रहोगे वही उपयोगी है, उससे आस्था मजबूत होगी, क्योंकि जितनी रुचि उतनी ही मजबूत आस्था, जितनी रुचि उतनी ही मजबूत आस्था, जितनी मजबूत आस्था उतनी ही साधना प्रबल होगी। मन की इस विचित्र दशा को समझने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट तो सामायिक करना चाहिए। करते सामायिक नहीं करते तो कैसे कंट्रोल करेंगे उसको, चपल मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? 10 मिनट भी हम निकाल नहीं सकते आत्मा के हित के लिए, खुद के हित के लिए। आत्मा दुखी है, मालूम है ना? आत्मा दुखी है, अनादिकाल से है, और ये अभी हम कुछ भी साधना नहीं करेंगे तो और दुख में पड़ने वाला है। तो रुचि तो रखनी ही पड़ेगी। 10 मिनट समय करो, मन को समझो ये कहां जा रहा है, मन के साथ हो जाओ, कहां कहां जाता है, क्या क्या विचार करता है, देखते जाना, उसके साथ रहना। एक दिन ध्यान नहीं करना, ध्यान की चिंता ही नहीं करो, मन के साथ रहो और सहज रूप से देखते रहो उसको, कहां कहां जा रहा है, क्या क्या कर रहा है,
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा।
ऐसा करना पड़ेगा। मन क्या क्या करता है यही मालूम नहीं है तो मन को अपनी ओर कैसे हम खींच सकते हैं? गलत क्या है और सही क्या है इसका ज्ञान तो अपने को हो गया है। विषयों में जाना गलत है और अपने आप में रहना, परिशुद्ध आत्म परिणामों में निवास करना, ये सही है, ये पता चल गया है। तो पहली बार क्या करना है? आत्मा की ओर आस्था तो जगाओ, रुचि भी जगाओ, जगा के रखो उसको। परंतु हम सफल क्यों नहीं हो रहे? आत्म सिद्धि में सफलता क्यों नहीं मिल रही है इसकी चिंता भी हमें ही करना है। मन नहीं करेगा, मन विचारक है। विचार देंगे तो वो काम करता है, विचार नहीं देंगे तो काम भी नहीं करेगा। वो जो फिर जो सहज रूप से हो रहा है अनादिकाल से रूढ़ी से वही करता रहेगा। तो थोड़ा सा ये करना है कि आस्था तो जग गई है, रुचि जग गई है, ऐसा लगता है कि आस्था है अपने को, रुचि भी है, तो फिर इतना और करना पड़ेगा कि चलो हम अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करें तो मन के साथ हो जाएं। बार बार एक बार उसके साथ हो करके, आत्मा अलग है मन अलग है, ऐसा दो बना दो उसको। आप कौन है? आत्मा। और मन कौन है? मन अलग है, वो साथी है, मन साथी है, उसके साथ होना। 10 मिनट शांत बैठ करके उसके साथ होना, चुपचाप रहना, वो क्या करता है देखना, देखते जाओ। आपको मन क्या क्या करता है एक दिन में ही पकड़ में आएगा। इसका गड़बड़ काम क्या क्या है एक दिन में पकड़ में आएगा, 10 मिनट में पकड़ लोगे उसको। और फिर कंट्रोल कैसे करें ये प्रश्न उठता है। कंट्रोल करने के लिए त्याग एक माध्यम होता है, त्याग धर्म। आप जिसको त्याग करेंगे वहां मन नहीं जाएगा। आप जिसको त्याग करेंगे वहां मन जा ही नहीं सकता। विदित वस्तुषु एव मनोगति, अविदितेषु कदापि न तद्गति। विदित वस्तुओं में ही मन की गति होती है, अविदित वस्तुओं में मन की गति कभी होती ही नहीं। विदित वस्तुषु एव मनोगति, मन जिस जिन वस्तुओं से परिचित है वहीं जाता है, और जिससे परिचित नहीं वहां जाने का सवाल ही नहीं। आपका मन कभी अमेरिका के सिटियों की गलियों में घूमा है? विदित नहीं है वो, तो विदित नहीं। विदित कहां कहां है? कोल्हापुर की गलियों से पूछो मन को। हर जगह घूम करके आया है और हर जगह वो देख करके आया है, वही याद करता है। जिसको हम दिखा के आए हैं साथ लेकर, उसको वह चिंतन करता है, याद करता है, बार बार दौड़ता है। चंचल विदित वस्तुओं में होता है, अविदित वस्तुओं में चंचल हो ही नहीं सकता, अपरिचित है, जबकि वो भी इंद्रिय विषय है। कोल्हापुर भी इंद्रिय विषय है और अमेरिका भी इंद्रिय विषय है। अमेरिका आपको बंद का कारण नहीं बन रहा है, कर्म बंद का कारण नहीं बन रहा है, कोल्हापुर बन रहा है। क्योंकि मन, आप जहां रहते हैं वहां मन रहता है, आप मन आपका साथी है, आप जहां जाते हैं साथ लेकर के ही चलते हैं। सुबह उठते ही लोग स्वयं तो घूमने को जाते ही हैं, पर कुत्ते को भी ले जाते हैं साथ। उसको भी ले जाते हैं साथ में, दोनों को व्यायाम होता है, ऑक्सीजन दोनों को मिलना चाहिए ना। तो उसको भी बांध करके रखेंगे तो काम चलने वाला नहीं है, वो बिगड़ जाएगा, अनारोग्य हो जाएगा। उस हम घूमने के साथ साथ उसको भी क्यों घुमाते हैं हम? उसी प्रकार मन को भी घुमाना पड़ेगा। बांध के रखोगे तो रखेंगे तो टेंशन बढ़ जाएगा उसको। मन को बांधने का कोशिश नहीं करना चाहिए कभी भी,
वो अपने आप घूमता ही रहता है।
हाँ, उसको सहज छोड़ना चाहिए। मन को बांधेंगे तो टेंशन आएगा। ध्यान करने वालों को मन को बांधने के लिए नहीं कहा, रोकने के लिए नहीं कहा। हाँ, कुत्ते को भी बांध के रखेंगे तो वो भी खराब हो जाता है, उसके पांव टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, उसकी प्रकृति बिगड़ जाएगी। मन भी एक कुत्ता ही है, आपने उसको पाला है, जब जन्म लिए थे गिफ्ट में मिला है। संगी पंचेंद्री बन करके हम जन्म लिए हैं तो गिफ्ट में मिला है, हमने साथ लाया है उसको। क्यों लाया है? इस कुत्ते के माध्यम से बहुत लाभ है। इसको घर में बांध के रखेंगे, बहुत लाभ है, बहुत फायदा है। और संगी पंचेंद्री नहीं रहेंगे तो मोक्ष का काम कैसे हो सकेगा, आत्म साधना कैसी हो सकती? ये बताया है कि नहीं शास्त्र में कि संगी पंचेंद्री को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, संगी पंचेंद्री को ही ध्यान की सिद्धि होगी, संगी पंचेंद्री जीव ही सबसे ज्यादा साधना कर सकता है, आत्म साधना मोक्ष मार्ग में। ये तो कहा है। और हमें जन्म के साथ ही एक ऐसा प्राणी मिला है तो उसका सदुपयोग करना है क्या दुरुपयोग? सदुपयोग। सदुपयोग करने के लिए ही वह मिलता है, मिला है। हम आर्यखंड में जन्मे हैं, हम आत्मा हैं, हम शाश्वत हैं, मन शाश्वत नहीं। आज है कल नहीं, ऐसा हो सकता। आत्मा शाश्वत है और ज्ञान शाश्वत है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का अभिन्न लक्षण है। जीव किसको कहते हैं? लक्षण क्या है जीव का? जो ज्ञाता दृष्टा होता है, जानना, जानना और देखना जिसका स्वभाव है, उसको जीव कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। हम कौन है? आत्मा। हमारा ज्ञान क्या है? हमारा ही वह लक्षण है। ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है, मन आपके साथ हमेशा नहीं रहता। कुत्ता तो सुबह सुबह रहता है, दिन भर रहता है क्या? कभी रहता कभी नहीं रहता। तो मन जो है कभी रहता है कभी नहीं रहता, ऐसी बात है। संगी पंचेंद्री बनकर के हम जन्म लेंगे तो उस समय में हमारे साथ मन रहेगा, परंतु मरण करके जब हम एकेंद्री बनेंगे मन नहीं रहेगा, आत्मा रहेगी, ज्ञान रहेगा, दोनों रहेंगे। द्विइंद्री बनेंगे तो भी आत्मा रहेगा, ज्ञान रहेगा, मन नहीं रहेगा। तीन इंद्री, चतुरेंद्री, असौग्नि पंचेंद्री बनेंगे तो भी आत्मा रहेगा, ज्ञान रहेगा, मन नहीं रहेगा। तो मन किसके पास रहेगा? सौग्नि पंचेंद्री जीव के पास रहेगा। हम सब कौन हैं? सौग्नि पंचेंद्री जीव। दुनिया में जितने मनुष्य हैं उनमें कोई असौग्नि पंचेंद्रीय मनुष्य है क्या? असौग्नि पंचेंद्रीय मनुष्य है क्या? एक भी नहीं है क्या? एक भी नहीं। असौग्नि पंचेंद्रीय एक भी नहीं। और जो विचारक नहीं है वो कौन है? जो विचार नहीं कर पाते, जो पागल हैं, समझ नहीं पाते, जल्दी पकड़ नहीं पाते, उनको मन है क्या? नहीं है। लेकिन मन कमजोर है, उनका कुत्ता कमजोर है, शक्तिशाली नहीं है। अपने को शक्तिशाली मन चाहिए, अच्छा काम करने के लिए शक्तिशाली चाहिए। और अच्छा काम करने के लिए शक्तिशाली मन मिला है तो उस शक्ति का हम दुरुपयोग करेंगे तो उतना ही बुरा भी हो सकता है। पंचम काल में बताया है, इसी पुस्तक में हम आगे पढ़ेंगे, छठे नरक तक हम जा सकते हैं अधिक से अधिक, छठे नरक तक। अब एक ही नरक बचा, नहीं तो पूरे जा सकते थे। छठे नरक तक हम जा सकते हैं, सातवें नरक नहीं जा सकते। कारण क्या है? हमारे कुत्ते के पास ये शक्ति नहीं है कि वह इतना बुरा काम कर सके। मन पाप भी कर सकता है तो पुण्य भी कर सकता है, दोनों प्रकार की शक्ति इसमें। उत्कृष्ट पाप भी मन के द्वारा होता है और उत्कृष्ट पुण्य भी मन के द्वारा होता है। अब मालिक पर डिपेंड है। मालिक कौन? आत्मा। मालिक के ऊपर डिपेंड है कि इसका सदुपयोग करना है क्या दुरुपयोग। इतनी शक्तिशाली मन को पाला है तो इससे हम अपने को हानि भी पहुंचाना चाहते हैं तो हानि भी पहुंच सकता है, और लाभ भी पहुंचाना चाहते हैं तो लाभ भी हो सकता है। इससे काम लेना है, मन तो मन है, इससे काम लेना है। जब हम मोक्ष मार्ग पर चल पड़ते हैं तो मन का अभाव नहीं कर सकते। मन का अभाव तो कब होता है? मन का अभाव तो मोक्ष जाते समय होता है, एक बात। या तो केवल ज्ञान की प्राप्ति जब होती रहती है उस समय होता है, एक बात। दो बातें, केवल ज्ञान उत्पत्ति के काल में मन को हम हटा देते, एक मन को नष्ट ही होता है, वो मरण होता है उसका, मन का मरण होता है, मन की मृत्यु होती है केवल ज्ञान की उत्पत्ति के काल में। केवल ज्ञानी मन सहित नहीं है। मन दो प्रकार का होता है, एक भाव मन और दूसरा द्रव्य मन। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के काल में भाव मन का मरण होता है, नहीं बच पाता। और क्या बचता है? आत्मा और ज्ञान। केवल ज्ञान बचता है और आत्मा बचती है। सारा काम केवल ज्ञान के माध्यम से होने लगता है, मन की जरूरत ही नहीं। एकेंद्री जीवों में जैसा मन नहीं वैसा केवल ज्ञानी को भी मन नहीं। अरहंत भगवान मन सहित नहीं है। जो विचारक मन होता है ना वो विचारक मन जो गलियों में घूमता था ना, वो वाला मन नहीं है किसको, अरिहंत भगवान को। और दूसरा मन तो उनके पास है, कौन सा?
द्रव्य
मन। भाव मन का काया है द्रव्य मन, काया है, डेड बॉडी है। भाव मन चला गया तो द्रव्य मन रहेगा, सुन रहे हैं ना? द्रव्य मन और भाव मन, इन दोनों में क्या फर्क है? द्रव्य मन पुद्गल का है, भाव मन पुद्गल नहीं। उन पुद्गलों के सहारे से जो विचार करने की क्षायोक्षम शक्ति है, द्रव्य मन के सहारे से भाव मन की उत्पत्ति होती है। द्रव्य मन कारण है, भाव मन कार्य है। द्रव्य मन के मिले बिना भाव मन मिलता नहीं है। शरीर मिले बिना आत्मा का जन्म कैसे होगा? शरीर पूर्वक ही होता है। ऐसा ही जिसको भाव मन मिलना है वो संगी पंचेंद्री है, तो हम मरण करके किसी गति में जन्म लेने को जाते हैं ना, उस समय आत्मा और ज्ञान जाता है, लेकिन भाव मन मिलने की पूरी संभावना के साथ हम जाते हैं। वह क्षायोक्षम शक्ति अपने पास पूर्व से ही होती है, होती है। इसलिए वहां जाने के बाद मनः पर्याप्ति, जिसको बोलते हैं मनोवर्गनाओं को ग्रहण करके आत्मा पर्याप्ति को पूर्ण कर लेता है, ऐसे मनः पर्याप्ति को पूर्ण करते समय मन के पुद्गल परमाणुओं को, जो मन कार्य कर सके, विचार कर सके, उसका साधन जो द्रव्य मन है, पुद्गल है, उसको ग्रहण करता है आत्मा। फिर उसको ग्रहण करने के साथ साथ ही भाव मन की उत्पत्ति हो जाती है। भाव मन और द्रव्य मन, इन दोनों की उत्पत्ति होने पर दो प्रकार के मन होते हैं। जैसे कुत्ते का शरीर भी है और उसकी आत्मा भी है। कुत्ता मरा तो आत्मा चली गई। अब कि ये क्या रहा? ये डेड बॉडी, शरीर रहा। अयोग केवली भगवान के पास और सयोग केवली भगवान के पास द्रव्य मन है किंतु भाव मन नहीं है, विचारक भाव मन। क्योंकि केवल ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात उसकी जरूरत भी नहीं। केवली भगवान मन के द्वारा काम नहीं लेते, मन के द्वारा नहीं सोचते, सोचने वाला मन वहां पर है भी नहीं। जब तक छद्मस्त अवस्था होती है, यानी अज्ञान अवस्था, छद्मस्त यानी अज्ञान अवस्था, अज्ञान अवस्था पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक होती है। पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अज्ञानता होती है। इसके बाद 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो अज्ञान का अभाव हो जाता है। अज्ञान का अभाव होने के साथ साथ भाव मन का भी अभाव हो जाता है। सुन रहे ना? इसको विचार करना है। देखो, हम सबको मन मिला है, इस मन का सदुपयोग हमें मोक्ष मार्ग पर करना है। मोक्ष मार्ग पर करना है तो कैसे करें, ये प्रश्न है। अयोग केवली भगवान तो ऐसे कर देते हैं कि मन को खत्म ही कर देते हैं। सयोग केवली भगवान जब ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं अयोग केवली बनने वाले होते हैं उस समय मन की चपलता को रोक देते। द्रव्य मन आत्म प्रदेशों के साथ है और उसको सूक्ष्म बनाकर उसका भी निरोध कर देते और केवली भगवान को श्वासोश्वास भी रहता है, इस श्वासोश्वास को भी वो रोक देते हैं। शरीर रहता है, ये भी विहार करना, उपदेश देना आदि इन कार्यों के काल में चंचल रहता है, इसको भी रोक देते हैं। इनको रोक करके क्या करते हैं? मनोयोग, वचन योग, काय योग, इन तीनों को अभाव कर देते हैं। जब योग का अभाव होता है, आत्मा अघाती कर्मों को पूरी तरह से नाश कर इस शरीर को छोड़कर इस बॉडी को छोड़कर बाहर आ जाती है, सिद्ध परमात्मा बनकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है और कहां पर विराजमान हो जाती? सिद्ध शिला के ऊपर आरा विराजमान बैठ जाती है। सिद्ध शिला के ऊपर बैठते हैं ना कि नहीं बैठते? तनुवात वलय के अंतिम सीमा पर विराजमान होती है, सिद्ध शिला पर नहीं। वहां पर क्या पालती मान कर बैठना है? क्या उनका वजन है, क्या है शरीर है? नहीं, वहां पर बैठते नहीं, उसका स्पर्श भी नहीं करते सिद्ध भगवान। उस सिद्ध शिला को छोड़ करके तो बहुत ऊपर है वो। अंतिम तनुवात वलय जहां होता है वहां पर जाकर के उनकी आत्मा टिक जाती है। ऐसी यहां से तनुवात वलय समाप्त हो गया, आगे अब वो आत्मा जाती नहीं, क्योंकि वो धर्म द्रव्य नहीं। जीव को गमन करने के लिए कौन सा द्रव्य चाहिए? धर्म द्रव्य चाहिए। धर्म द्रव्य का अभाव होने से वे आत्मा वहीं पर ठहर जाती है, सिद्ध भगवान की आत्मा। आप यदि कहेंगे तो सिद्ध शिला पर जाकर के आत्मा बैठ जाती है, तो फिर ऊपर धर्म द्रव्य है क्या? नहीं, उनके मस्तक से ऊपर है, तो धर्म द्रव्य होते हुए भी आत्मा वहां कैसे ठहर गई? आत्मा का ये स्वभाव है, जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक जाएगी, ऊर्ध्वगमन करेगी। ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है आत्मा। ऊर्ध्वगमन स्वभाव से सीधा जाकर के तनुवात वलय के अग्रभाग पर रुक जाएगी, क्योंकि वहीं तक धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य को छोड़कर आगे जा नहीं सकती, आगे पटरी नहीं है, हमारी गाड़ी रुक गई। हाँ, पटरी वहीं तक है, तनुवात वलय तक ही धर्म द्रव्य की पटरी बिछी हुई है। आगे कहां है? अलोक आकाश आ गया, वहां आत्मा जा नहीं सकती। कोल्हापुर तक ही पटरी है कि नहीं? आगे है ही नहीं, तो गाड़ी यहीं से लौटना हो तो यहीं से लौटेगी, लेकिन आगे बढ़ नहीं सकती। धर्म द्रव्य पटरी के समान काम करता है। जीव और पुद्गल जो गमनशील दो द्रव्य हैं, इनको गमन करने के लिए सहयोग देता है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य को पटरी का उदाहरण दिया है और अधर्म द्रव्य को स्टेशन का उदाहरण दिया है। पटरी और स्टेशन, स्टेशन किस काम में आता है? रुकने के काम में। और पटरी किस काम में आती है? चलने के काम में। लेकिन स्टेशन और पटरी ये दोनों धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के समान है, यद्यपि समान है किंतु यात्रियों को स्टेशन रोकने के लिए कारण है या स्टेशन यात्रियों को रोकता है?
कारण
रोकता है या कारण है? कारण है। जीव रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन इसके बिना रुक नहीं सकते। कैसे रुकेंगे? और गाड़ी वहां रुकने वाली नहीं है। रुकना हो तो स्टेशन पर ही आपको रुकना पड़ेगा, गाड़ी यहीं पर आकर के रुकेगी और आप बैठ करके जाएंगे, इसलिए रुकने का स्थान तो स्टेशन ही है। स्टेशन यह नहीं कहता कि रुको रुको गाड़ी आ रही है, नहीं, आप ही रुकने की इच्छा करते हैं तो रुक सकते हैं। इसी प्रकार पटरी भी गाड़ी को यह नहीं कहती कि रुको रुको इतनी क्यों भाग रही, गाड़ी भागती हुई गाड़ी को पटरी रोक नहीं सकती, रुको ऐसा प्रेरणा नहीं कह सकती, उदासीन कारण है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये सभी उदासीन कारण है, रुकना चाहे तो रुक सकती गाड़ी, नहीं तो नहीं, बीच में भी रुक सकती है, स्टेशन पर भी रुक सकती है,
गाड़ी पे निर्भर।
हाँ, उस प्रकार से सिद्ध भगवान सिद्धालय के अंदर ठहरे हुए। सिद्धालय किसको कहते हैं? वो जो अंतिम तनुवात वलय है, आगे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कुछ नहीं है, वही सिद्धालय है। सिद्ध शिला सिद्धालय नहीं है, ये ध्यान रखिए आप लोग। सिद्ध भगवान कहाँ है? तो सिद्ध शिला पर है, यही उत्तर देते हम, नहीं तनुवात वलय में है ये उत्तर देना चाहिए। सिद्ध शिला पर बैठे हैं कहेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, वहां पर एक भी सिद्ध परमिष्टि नहीं, अनंत काल से अनंत भगवान मोक्ष गए हैं, एक भी सिद्ध परमात्मा वहां नहीं है, और फिर हमारा कहना कितना गलत हो जाएगा। सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान रहते हैं, नहीं तनुवात वलय में रहते हैं। तनुवात वलय से और सिद्ध शिला का कितना अंतर है? योजनों में अंतर है। और सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान हैं, उनकी आत्मा कितनी ऊंची रहती है मालूम? पूर्व भव में जो तप करके अपने शरीर को छोड़कर जो गए हैं ना, उस पूर्व के शरीर के ऊंचाई के बराबर ही उनकी ऊंचाई रहती है, किंचित न्यून कहा है, बाकी लगभग उतना ही है, न छोटी होती है न बड़ी होती है, अधिक छोटी भी नहीं अधिक बड़ी भी नहीं, किंचित न्यून हो करके जैसे बाल के बराबर कम हो करके चारों ओर से। खड्गासन से मोक्ष हुआ है तो खड्गासन से रहते हैं, पद्मासन से मोक्ष हुआ है तो पद्मासन से रहते हैं। सिद्ध भगवान ऐसे, ये सिद्धों का परिचय है। अपन इनका परिचय करने से पहले अयोग केवली भगवान जब मोक्ष जाते हैं, वो अयोग अवस्था क्या है इसकी बात चल रही है। अयोग केवली गुणस्थान 14वां गुणस्थान है, इसके पश्चात कोई गुणस्थान नहीं है। गुणस्थान में रहता हुआ जीव संसारी कहलाता है, मोक्ष जाते समय भी अरहंत भगवान संसारी हैं क्या मुक्त हैं? यदि मुक्त कहेंगे तो शरीर नहीं है ये कहना पड़ेगा, शरीर तो है उनका, 14 गुण स्थान में शरीर है, आघाती कर्म है, इसलिए 14 गुण स्थान में शरीर है। द्रव्य कर्म रहेगा तो नो कर्म तो रहेगा ही, शरीर नो कर्म है, और आघाती कर्म जो बंदे आत्मा को हैं वो द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म को नाश किए बिना नो कर्म को नाश नहीं कर सकते, समझ में आया? द्रव्य कर्म कौन है अरहंत भगवान का? आघाती कर्म। आघाती कर्म को नष्ट किए बिना नो कर्म शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, और इन दोनों को नाश के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग का निरोध करना पड़ता है। योग का निरोध मन का, वचन का और काय का। वचन का निरोध क्या है? पहले तो स्थूल वचन योग को रोकते हैं, वो जो उपदेश देना है, उपकार करना है, बोलना है, ये सब रोक देते हैं। फिर अभ्यंतर वचन योग को भी रोक देते हैं, तो ये भी रोक है, रोक दिया। वचन योग, काय योग, विहार आदि करना, ये इसको भी रोकते हैं। मनोयोग, आत्मा के प्रदेश और उन प्रदेशों पर जो द्रव्य मन है उसके साथ, उसको भी रोकते हैं। द्रव्य मन का आकार प्रकार कैसा रहता है? हाँ, कमल देखा है सरोवर में, कमल होता है अष्ट पंखुरी के कमलाकार रहता है। द्रव्य मन पुद्गल का होता है, कहां पर रहता है? वह हृदय के स्थान पर रहता है। भगवान जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के छाती पर आपने कभी देखा होगा कि कमल आकार का आकार बनाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि महाराज वो क्या है, ऐसा क्यों बनाते हैं, वो तो श्वेतांबर प्रतिमा दिखती है ऐसा। नहीं, गलत है। वो कमलाकार होने से श्वेतांबर प्रतिमा नहीं कहलाती। हाँ, अरहंत भगवान को आठ पंखुरी वाला, और आठ पंखुरी बनाते हैं उसको, आठ पंखुरी वाला वह द्रव्यमन होता है, इसको दिखाया गया है। केवल द्रव्यमन ही होता है, भावमन नहीं होता, इसको दर्शाया गया है उसके माध्यम से। जैसे बाहुबली भगवान है, उनको शरीर पर बेल दिखाई, बेल चढ़ी ना, बेल दिखाई। क्यों दिखाई? इनको उपसर्ग हुआ था, नहीं इसमें उस उपसर्ग नहीं, ये एक साल तक खड़े थे और तपस्या के काल में वहीं से उग करके बेल चढ़ी और फिर भी वो खड़े थे। इस तपस्या की महिमा को दिखाने के लिए बेल दर्शाया जाता है, किंतु केवल ज्ञान के पश्चात वे बेल रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा अधर में हो जाती है। केवल ज्ञान के पश्चात ये बेल रह नहीं सकते, आत्मा अधर हो जाती, शरीर अधर हो जाता है। तो वहां पर केवल ज्ञानी को, चाहे बाहुबली हो, चाहे सामान्य हो, चाहे तीर्थंकर हो, द्रव्य मन तो रहता है। द्रव्य मन को मूर्ति में दिखाया जाता है। बाहुबली भगवान को दिखाया है?
नहीं,
मूर्ति को नहीं है शायद, लेकिन है वो। शिल्पी को बताएंगे तो दिखाएगा वो, नहीं तो वो तो मूर्ति बनाएगा। आजकल शास्त्रोक्त पद्धति से ही मूर्ति बनाते हैं, द्रव्य मन को दिखाते हैं, बाल को दिखाते हैं। हाँ, श्रीवत्स, श्रीवत्स ने द्रव्य मन शुभ होता, शुभ होता, शुभ परमाणु उसके रहते, अशुभ परमाणु नहीं, शुभ परमाणु से बना हुआ द्रव्यमन होता है। ये
अरहंत भगवान का,
अरहंत भगवान को, अरहंत भगवान को ही, यानी संयोग केवली और अयोग केवली, इन दोनों को द्रव्यमन होता है। भावमन 12वें गुण स्थान के अंत में नष्ट होता है। इधर केवल ज्ञान हुआ और इधर अज्ञान नष्ट हुआ, तो भाव मन भी नष्ट हुआ। अब वह भावमन क्या करता था? देखिए, बारहवें गुण स्थान में रहने वाले मुनि महाराज ध्यान में हैं, द्रव्य मन भी है और भाव मन भी है, दोनों का उपयोग वो कर रहे हैं। मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान तो है ही नहीं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों हैं, और द्रव्य मन भी है, भाव मन भी है। भाव मन श्रुत ज्ञान के आश्रय से रहता है। किस ज्ञान के आश्रय से? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान कौन? विचारक। और मति ज्ञान कौन? क्या करता है? मति ज्ञान वस्तु के परिचय को सुरक्षित रखता है, जिसको मेमोरी कहते हैं। आपके मोबाइल में भी मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, मति ज्ञान मेमोरी कार्ड है, मति ज्ञान मेमोरी कार्ड है। श्रुत ज्ञान, हाँ, मेमोरी कार्ड में से निकाल निकाल करके उसका विचार करना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या डाला था, ये निकल आया, ये क्या है, ये विचारक है। श्रुत ज्ञान विचारक है। जो विचारक होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, और जो स्मरण में रखने का काम करता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। इसको अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा के रूप में चार प्रकार का बताया है। अवग्रह हो करके ईहा हो करके वस्तु, देखो वस्तु का ज्ञान, वस्तु को मति ज्ञान ने ग्रहण कर लिया, तो पहले अवग्रह यानी ग्रहण होता है। ईहा वो क्या है, उसके उसका परिचय करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो वह ईहा। अवाय वो वस्तु का निर्णय होता है, निर्णय होने के बाद फिर वो धारणा हो जाती है। निर्णय के बिना धारणा नहीं होती। वस्तु क्या है, इसका निर्णय किए बिना वस्तु को हम स्मरण में रखेंगे कैसे? पहले वस्तु का परिचय होता है, ग्रहण होता है, परिचय होता है, निर्णय होता है, फिर बाद में हम धारणा में बिठा लेते, फिर वो भूलते नहीं हैं। अमेरिका की गलियों में एक बार भी घूम के आओगे तो इसमें सबसे पहला काम करता है मति ज्ञान। पहले सब गलियों का ग्रहण होता है, फिर ये ऐसा क्यों, ये अमेरिका है क्या, नहीं, ये कौन सी गलियां हैं, ये कहाँ आए, किस सिटी में आए हम, ये कौन, ये ईहा मति ज्ञान है। अब अवाय होता है, नहीं नहीं ये तो अमेरिका ही है, देखो ये बिल्डिंग सारे वैसे ही लग रहे हैं और ये लिखा भी है बोर्ड पर, इसके आधार से हम निर्णय करते हैं कि ये अमेरिका है, शिकागो सिटी है। ये धारणा हो गई, एक बार आप देख करके आ गए, देखा हुआ भूल सकता है क्या? नहीं भूलेगा। यहाँ भारत में आएंगे और दिल्ली की सिटी में उन बिल्डिंगों के सामने से जब गुजरेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम अमेरिका में हैं। अमेरिका के अलग हैं, दिल्ली के अलग। अब याद करना चाहोगे तो याद आ सकती है। धारणा मति ज्ञान के भीतर वो सभी स्मरण में है तो याद आएगा, स्मरण में नहीं है, उड़ गया है तो फिर वो डिलीट हो गया है। वहां से उड़ गया है, अमेरिका डिलीट हो गया, अब वो बिल्डिंग याद नहीं आ रही, बिल्डिंग याद नहीं। कई बार होता है ऐसा, जैसे आप भक्तामर वगैरह पाठ करते हैं, तत्वा सूत्र पाठ करते हैं, कुछ सूत्र रह जाते हैं और कुछ सूत्र डिलीट ही हो जाते हैं, और पुनः बिठाना पड़ता है, पुस्तक निकाल करके जो जो डिलीट हुए हैं वो स्थान पर पुनः फिट करना पड़ता है। मति ज्ञान मेमोरी कार्ड का काम करता है। श्रुत ज्ञान मेमोरी कार्ड से जो विषय हैं, सूत्र हैं, उन सबको निकाल करके देव कहता है मति ज्ञान को। तो मति पूर्वकम श्रुतम, मति ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान जो होता है मति पूर्वक होता है। मति ज्ञान में जो याद किए हुए वस्तु हैं, पदार्थ हैं, श्लोक हैं, चित्र हैं, वो सब वहां सेव रहते हैं। सेविंग किया हो तो सेव रहते हैं, सेविंग नहीं किया तो सेव भी नहीं रहती। कंप्यूटर में टाइप करते समय सेव करना भूल गए तो टाइप तो होता जाता है और इधर सेव नहीं होता हो वो सब अक्षर निकल जाते। और सेविंग स्विच जो होता है उसको दबाने से और सेव हो जाता है। वो कभी 10 साल भी निकल जाए तो वो कहीं जाएगा नहीं। ये धारणामति ज्ञान है, ये धारणामति ज्ञान, ये बाहर का विज्ञान है। हम अंदर के विज्ञान को समझा रहे हैं। अंदर भी कंप्यूटर, आत्मा कंप्यूटर है, और धारणामति ज्ञान जो है वो मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड में उसको सेव करना पड़ेगा, और सेव करने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जहां भी जाना हो वहीं जा करके सेव करना पड़ेगा। और फिर उन सेव किए हुए पदार्थों के बारे में आप कुछ सोचना चाहते हैं तो पुनः याद करना पड़ता है ना, मैं वहां गया था, क्या किया था, हाँ आ गया पिक्चर, फाइल निकाल दिया। यहां से फाइल निकल करके आता है और उसको खोल देती है, फिर हमारा चिंतन शुरू होता है। ये श्रुत ज्ञान का काम, चिंतन जो करता है ना ये श्रुत ज्ञान, और मेमोरी का जो काम करता है वो मति ज्ञान। और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये दोनों ही ज्ञान केवल ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद दोनों रहते नहीं, नष्ट हो जाते हैं दोनों। जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो कार्ड है। केवल ज्ञान कार्ड नहीं।
उसके ऊपर है,
हाँ उसके ऊपर का है वो परमनंट, वो आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा है। केवल ज्ञान आत्मा है। आत्मा का स्वभावभूत ज्ञान कौन सा है ये पूछेंगे तो क्या कहना पड़ेगा? केवल ज्ञान। किंतु मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि आत्मा के स्वभाव रूप ज्ञान है क्या? नहीं। मति ज्ञान तो कारण रूप है, श्रुत ज्ञान तो वो एक फाइल है जिसको खोल करके हम काम करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन करने वाला आत्मा। परंतु फाइल से कितना चिंतन करेगा? फाइल में जितना है उतना
नहीं।
पर केवल ज्ञान ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान अनंत है। केवल ज्ञान तो उसको फाइल कहना भी गलत है। ये कहीं फाइल निकल करके नहीं आया, दुनिया ही फाइल है। और सभी फाइलों को एक साथ देखने की शक्ति केवल ज्ञान के अनंत चक्षु है। कोई भी वस्तु, कोई भी फाइल, कोई भी पदार्थ कहीं भी छिप करके रह नहीं सकती केवल ज्ञान से। केवल ज्ञान सबको विषय बनाता है। ऐसा ज्ञान यद्यपि संसार दशा में ही प्राप्त होता है, शरीर के रहते हुए, आघाती कर्मों के रहते हुए केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ये होता है इसलिए हम सब लोगों को ये उपदेश मिला है, नहीं तो सिद्ध भगवान बनने के बाद ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा होता तो हमारे लिए ये कुछ भी नहीं मिलता। ये विश्व, ये संसार इतना रहस्यपूर्ण है, इसमें इतने इतने सारे विषय हैं, इतना विस्तृत चर्चा, अभ्यंतर ज्ञान की चर्चा, ये नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा उपकार है कि शरीर रहते हुए केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ये सबसे बड़ा उपकार है केवल ज्ञान का। अयोग केवली गुणस्थान में घाती कर्म नष्ट होते ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, इतना तो है। तो घाती कर्म जब नष्ट होते हैं तो शरीर भी नष्ट होता है, अंतर मुहूर्त में ही यह शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, इसके परमाणु बिखर जाते, दिखेंगे ही नहीं, कहां गए, और वहां पर नख और केश रह जाते, बाल और नाखून, दांत नहीं रहते, दांत भी नहीं रहेंगे, नाखून रहेंगे, बाल, ये क्यों रहते? ये भी प्रकृति नियम है, क्या मालूम ये क्यों बचते हैं, सभी कपूर के समान उड़ गए, और ये भी औदारिक शरीर का ही है, एक अंग है, हिस्सा है, बाल भी, किंतु ये कैसे बच जाते हैं, क्यों बच जाते हैं, क्यों बच जाते होंगे, इसका उत्तर तो है, लेकिन क्यों बचते हैं, किस कारण से बचते हैं, इसका कोई उत्तर खोजना मुश्किल है। क्यों बच जाते होंगे इसका तो थोड़ा सा सोच हो सकता है,
बताने के लिए यहां से
उसके आधार पर निर्वाण हुआ ये मालूम हो जाएगा।
ये आपका सोच ठीक है बिल्कुल, जहां भगवान बैठे थे तप कर रहे थे वहां से मोक्ष गए, अब सारा ही उड़ जाएगा तो बाद आने वाले देखने वाले मोक्ष कहां से हुआ ढूंढते फिरेंगे, वो भगवान को ढूंढते फिरेंगे, मोक्ष गए भी क्या नहीं गए हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ढूंढते ही फिरेंगे ना, और ढूंढते ढूंढते आ गए और नख और केश दिखे तो विश्वास होता है कि भगवान यहां से मोक्ष गए। तो भगवान पीछे संकेत छोड़ करके चले जाते हैं, मैं यहीं से गया था, सबको पता चले बाद में। ये प्रकृति नियम से जानबूझकर छोड़ के नहीं जाते, प्रकृति नियम से उतने बचते हैं। फिर इंद्र देवता आकर के हाँ
आपने बाल मूर्ति पर बाल क्यों है उसका विवेचन किया, मन का वो विवेचन किया, वेद जो भगवान बाहुबली के ऊपर चढ़ा है उसका भी विवेचन किया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो सर्प का फणा दिखा देते हैं
वो देवग्रत है, वो शरीर का कोई अंग नहीं, वो देव है, देव ही अपने शरीर को फन के रूप में बना करके वो रक्षा करने की दृष्टि से छत्र बनाया, फन को ही छत्र बनाया।
नहीं, जब केवल ज्ञान होता है तो भगवान का तो उपसर्ग ही नहीं रहता है, तो फिर देव को छत्र बना के क्यों कर रहा
है, छत्र बना कर
क्या
आवश्यकता, क्या मतलब पहचान है मूर्ति की कि इनको मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ था, इतनी पहचान के लिए बनाया जाता है, ये पहचान है,
बेल है।
हाँ, बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान हुआ क्या, नहीं सिद्ध भी बने और अरहंत भी बने, अरहंत अवस्था में बेल थी क्या, नहीं शरीर तो ऊपर हो जाता है, बेल कैसे रहेगी, तो मुनि अवस्था जब तक रहती है तब तक बेल आदि है, छत्र आदि है, उपसर्ग करने वालों का जो संपर्क है, गजकुमार मुनि को सेगड़ी रखी थी, तो केवल ज्ञान के बाद सेगड़ी रह सकती है क्या, नहीं गिर जाएगी वो,
परिचय
किंतु गजकुमार मुनि की अरहंत प्रतिमा को यदि बनाओगे सिगड़ी बनानी पड़ेगी और सुकोशल मुनि महाराज शेरणी ने भक्षण किया था
वो दिखाना पड़ेगा
फिर वो प्रतीक हैं, प्रतीक जो दिखाए जाते हैं वो केवल ज्ञान के बाद भी थे ऐसा नहीं, उमनी अवस्था में थे, इसको दिखाने के लिए शिल्पी ने बनाया। बाहुबली भगवान पूजनीय है, केवल ज्ञान के बाद बेल नहीं थी, मुनि अवस्था में बेल थी, मुनि अवस्था में बेल भी थे और मुनि महाराज भी थे, हम बेल की पूजा करते थे क्या, नमस्कार करते थे? नहीं, महाराज की, रत्नत्रय के, महाराज यानी रत्नत्रय, उनके आत्मा के रत्नत्रय गुणों की वंदना करते थे, गुणों की पूजा करते थे। उसी प्रकार छत्र, छत्र की पूजा होती है क्या?
नहीं,
नहीं। सांप के रूप में उस देव ने अपना शरीर को विक्रिया को बना लिया, भगवान के ऊपर कुछ उपसर्ग ना हो जाए, तो किसकी वंदना करोगे आप? भगवान की,
भगवान की,
या उस देव की?
भगवान की,
भगवान की। देव तो वो भी एक दिन आकर के मोक्ष जाने वाला है, मुनि बनने वाला है, मुनि बनने के बाद नमस्कार उनको करो ना, अभी से क्यों शुरू किया? देव सभी असंयम अवस्था में होते कि नहीं? संयमी है क्या देव लोग?
नहीं,
सही में असंयमी है। इंद्रिय विषयों का त्याग है क्या उनको?
नहीं है,
नहीं है। देव कोई दिगंबर होते हैं क्या?
नहीं,
नहीं है। दीक्षा लेते हैं क्या? पार्श्वनाथ भगवान के पास आ गए तो खुद भी मुनि बन गए थे क्या?
नहीं,
नहीं। तो वंदना छत्र की नहीं होती, वंदना किसकी?
भगवान
की। हम मंदिर आते हैं, मूर्ति देखते हैं पार्श्वनाथ भगवान की, छत्र भी दिखता है और भगवान भी दिखते हैं। हम घर से जब निकले किस उद्देश्य से निकले, छत्र के उद्देश्य से या भगवान के उद्देश्य? उद्देश्य बना करके हम निकले, भगवान से मतलब है हमको। वो छत्र बनाने वाले भी, वो जो देव था धर्मेंद्र देव था, वो छत्र जिन्होंने बनाया वो भी किस उद्देश्य आए?
दर्शन के उद्देश्य,
भगवान को संकट ना हो और भगवान के हम इस तरह से संकट निवारण का सेवा करेंगे तो हमारे लिए धर्म होगा। वो भी अपने हित के लिए ही आए, खुद का हित हो, आत्म कल्याण हो और हमारे माध्यम से कुछ सेवा हो, इसी के लिए आए हैं। तो भगवान और भगवान के सेवक, सेवक महाव्रती मुनि हो, हाँ, सेवक महाव्रती मुनि हो तो दोनों को नमस्कार करो। दोनों संयमी हैं, क्योंकि संयमी संयमी का उपसर्ग दूर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कर सकता है। संयमी अगर उपसर्ग दूर कर रहा हो तो दोनों को नमस्कार करो, करने वालों को भी और जिसके ऊपर हो रहा है उनको भी। विष्णु कुमार मुनि ने ऐसा ही किया ना, विष्णु कुमार मुनि अवस्था में जाकर के अगर करते तो वो भी वंदनीय, मगर वो वस्त्र धारण करते हैं तो वंदनीय नहीं है। वंदनीय अवस्था तो दिगंबर अवस्था ही है। समय हो गया जिनवानी।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहा की जिनवानी। जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम निशयांद रहे। अब ना विषयाः।